Surgióme.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत गितेश शर्मा और पत्रकार मानस प्रतिम भुयान।
एम्बेसडर शर्मा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्षण भारत दौरे पर आए। कल प्राइम मिनिस्टर लक्षण ने हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ काफी एक्सटेंसिव बात किया। इस बातचीत में काफी नतीजा निकल के आया। एक परिणाम ये निकला कि भारत और न्यूजीलैंड एक सुरक्षा कोऑपरेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक एग्रीमेंट का साइन हुआ। तो आप ये सारे जो परिणाम है जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्षण के बीच बातचीत से जो परिणाम निकला, परिणाम को आप कैसे देखते हैं?
मैं कहूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर तरह से हम लोग न्यूजीलैंड को शुरू से जानते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ में भी हम लोग दोनों सदस्य रहे हैं और हमारा इतिहास भी एक तरह से जुड़ा रहा है। लेकिन एक तरह से उतने हम लोग करीब नहीं आ सके क्योंकि न्यूजीलैंड ज़्यादा पश्चिम के साथ जुड़ा था। लेकिन आप देखें पिछले 10 साल 20 साल आप देखें तो न्यूजीलैंड में भी काफ़ी तब्दीलियां आने लगी हैं, काफ़ी चेंजेस आने लगी हैं और बहुत मेहनत किया गया है दोनों तरफ से। आप देखें जयशंकर साहब अक्टूबर 2022 में गए थे न्यूजीलैंड, उसके बाद उनके जो उप प्रधानमंत्री है विंस्टन पीटर्स वो भी आए थे मार्च 2023 में, उन यहाँ पर भी वार्ता हुई थी। उसके बाद आप देखें तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी वो अगस्त में पिछले साल वो गई थी न्यूजीलैंड, अब उनके प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्षण यहाँ पर आए हैं। तो ये सब देखते हैं तो अचानक नहीं हुआ है, इसमें बहुत काम बहुत मेहनत लगा है इसमें। और जहाँ तक आपने कहा सुरक्षा, तो वो एक तरफ है, सुरक्षा तो है ही क्योंकि इंडो पैसिफिक के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है, लेकिन उसके अलावा भी आर्थिक क्षेत्र में भी इस बार जो वार्ता हुई है दिल्ली में तो फ्री ट्रेड की भी बात की गई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो बहुत ही न्यूजीलैंड शुरू से काफ़ी एक तरह से, अगर मैं बहुत ही खुले तरीके से कहूँ तो दो तीन साल पहले जब आप देखें या 2019 में भारत ने आरसेप नहीं ज्वाइन किया था तो निराशा थी। उनकी अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ट्रेड से जुड़ा है, बिल्कुल वो चाहते हैं कि अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं। तो अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अभी बात चली है कि जल्द ही इसको मुकम्मल करना होगा, इसको फाइनलाइज करना होगा, मेरे ख्याल से दोनों इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छी सफलता है।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मीडिया स्टेटमेंट में बोला कि दोनों देश के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर निगोशिएशन शुरू करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी दोनों देश ने एक साथ काम करने का निर्णय लिया है। तो ये जो डिसीशंस है आप कैसे देखते हैं?
एक तरह से जैसे कि कहें कि मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क में तो इसमें कुछ मुश्किलें आती, जैसे मैंने आपको कहा आरसेप में तो हम डेयरी एग्रीकल्चर ये कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में काफ़ी फर्क है। तो लेकिन जो बायलेटरल क्षेत्र में है तो मेरे ख्याल से वार्ता के माध्यम से तो इसको सुलझाया जा सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड दूध और भी कुछ ऐसे कृषि के कुछ ऐसे चीज़ें हैं वो जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो हम भी इसमें काफ़ी सक्षम हैं कि हमारा भी कृषि क्षेत्र, हमारा भी हॉर्टिकल्चर क्षेत्र, तो इस सब में भी हम भी काफ़ी एक तरह से स्ट्रांग कह सकते हैं। तो सिर्फ डायरेक्ट बायलेटरल टॉक्स और फ्री ट्रेड डायरेक्ट हो तो उसमें मेरे ख्याल से कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल सकता है, इसको सुलझाया जा सकता है। तो न्यूजीलैंड एक तरह से छोटा देश है, उनकी आबादी आप देखें 6 मिलियन और उनको मिल रहा है मार्केट जो 1,400,000,000 के आसपास, तो आप देखें कि इसमें फायदा किसको ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर भी फ्री ट्रेड से हमेशा आजकल ये माना जाता है कि फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स के माध्यम से तो काफी कुछ हर सिचुएशन हर काइंड ऑफ ट्रेंड्स वीकनेसेस सबका ख्याल रखा जा सकता है। तो मैं मानूंगा कि बड़ी उपलब्धि है इस विजिट की।
सेक्रेटरी जो एमईए में है जयदीप मजुमदार ने एक प्रेस वार्ता में कल बोला कि लक्ष्य ये है कि इस साल के अंत तक एफटीए को फाइनलाइज किया जाए। आपको लगता है कि एफटीए नेगोशिएशंस इस साल खत्म हो जाएगा और दोनों देश एफटीए एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे?
ना, कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी तो साल के शुरू में ही ये मार्च है, तो अवश्य साल के अंत तक काफी हद तक प्रोग्रेस देखा जा सकता है। और हमें तजुर्बा भी है क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ एफ्टा भी किया है, तो एक तरह से हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं सक्षम हैं, वो उनमें वो काबिलियत है कि वो अपने देश के हित में काम कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड को भी ये आवश्यकता है कि वो दिखाएं कि भारत के साथ कुछ प्रगति है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पक्ष ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द एग्रीमेंट पर दस्तखत हो जाए।
प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री लक्षण ने ये भी निर्णय लिया कि जो द्विपक्षीय जो डिफेंस कोऑपरेशन है उनको मजबूत किया जाए। इनके लिए जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत के जो आपसी सहयोग के बारे में भी बातचीत हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला था कि एक रोडमैप तैयार किया जाएगा ये जो रक्षा उद्योग दोनों देशों का है उनका सहयोग बढ़ाने के लिए। तो ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के बारे में मोदी जी ने बोला, ये आप कैसे देखते हैं?
मैं कहूंगा कि बड़ा पॉजिटिव है एक तरह से। वैसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक तरह से जैसे आप देखें इंडो पैसिफिक पर सहमति है, तो हम एक ही पक्ष में हैं, एक ही दिशा में हम जा रहे हैं और एक ही टाइप के हमारे कंसर्न्स भी हैं। तो अगर सब कुछ एक ही जैसा है तो हम क्यों नहीं सहयोग कर सकते हैं। तो जहां रही बात सुरक्षा की और हमारे नेवीज के और हमारे जो सेना के बीच में, तो ये बिल्कुल संभव है। और भारत भी जैसे आप देखें पड़ोस में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कोऑपरेशन कर रहा है। तो इंडो पैसिफिक मामले में अगर देखा जाए तो सभी जो देश हैं इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सभी एक ही साइड में हैं और एक ही टाइप कंसर्न्स हैं कि रूल्स बेस्ड होना चाहिए, ओपन, फ्री, इंक्लूसिव। और तो उनमें मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड और इंडिया में स्कोप है कोऑपरेशन करने की।
ये भी बताया गया कि हिंद महासागर में जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए कॉम्बाइंड टास्क फोर्स 150 में जो इंडियन नेवी न्यूजीलैंड नेवी के साथ मिलके काम कर रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है आपके मुताबिक?
हम बात करते हैं कई बार, कुछ आजकल ऐसा माहौल बना हुआ है कि कुछ देशों के बीच जंग छिड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जैसे टेररिज्म, स्मगलिंग, होस्टेज टेकिंग, तो इसमें क्रॉस कटिंग हो जाता है कि जो फ्रेंडली नेवीज हैं कोऑपरेट करती हैं। कि सोमालिया का भी आप देखें, वहाँ से भी पायरेसी का भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो जो फ्रेंडली नेवीज हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, अपने रिसोर्सेज को भी कंबाइन करके जो टारगेट्स होते हैं उनसे डील करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे भारत को भी और न्यूजीलैंड को भी फ्रेंडली कंट्रीज कहा जाएगा और फ्रेंडली नेवीज कहे जाएंगे, तो ये एक तरह से बहुत ही वेलकम स्टेप है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए।
बातचीत में दोनों साइड ने ये भी एक डिसीजन लिया था स्किल वर्कर्स की जो मोबिलिटी को सरल बनाने के लिए और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया गया। तो ये जो माइग्रेशन और मोबिलिटी पे जो ये एक डिसीजन हुआ है, ये आप कैसे देखते हैं?
ये तो बहुत ही सराहनीय है क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि इलीगल माइग्रेशन हो, और इलीगल माइग्रेशन अगर हो तो जो लीगल रूट है तो उस पर असर पड़ता है। लेकिन आज देखिए कि विश्व भर में कहीं भी जाएं, किसी भी देश में आप जाएं, भारत के प्रोफेशनल्स वहां पर मौजूद हैं और एक तरह से बहुत ही उनका जो कार्य है सब उनकी सराहना करते हैं, प्रेज करते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज में तो अगर ऑर्डरली माइग्रेशन हो तो इससे सबको फायदा होता है। तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहाँ हमें एक तरह से भाषा की भी कोई वो नहीं है, कॉमनवेल्थ का भी ट्रेडिशंस है और हम शुरू से चाहे क्रिकेट हो कल्चरली हम जुड़े हुए हैं, तो एडजस्टमेंट भी मुश्किल नहीं है जैसे डायस्पोरा में जाके रहना, वहाँ पर काम करना। लेकिन भारत के प्रोफेशनल जो है इतनी तादाद में हम प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर न्यूजीलैंड में उनको अवसर मिले, मौका मिले, तो मैं कहूंगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा अग्रीमेंट को समर्थन करना चाहिए।
बातचीत का एक काफी महत्वपूर्ण ये था एस्पेक्ट था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विरोधी गतिविधियों को न्यूजीलैंड में रोकने के लिए न्यूजीलैंड से क्या अपेक्षा जाहिर किया।
न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा।
सो बेसिकली जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स न्यूजीलैंड में भी काफी एक्टिव है और एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज ये चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि न्यूजीलैंड सरकार इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे आफ्टर दिस विजिट?
जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम दोस्त हैं तो खुल के हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो अगर हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं तो हम क्या करेंगे। हम तो जब आए हैं हमारे अतिथि और ऐसे देश से जो हम दोस्त मानते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप में बताया उनको कि हमें इससे नुकसान पहुंचता है, हमें तकलीफ पहुंचता है कि आप जैसे देश में ऐसा हो रहा है, ऐसी गतिविधियाँ। और न्यूजीलैंड साइड ने इसको नोट कर लिया और वो अपने कानून के तहत जो करना चाहें, तो मैं समझूंगा कि उन्होंने नोट कर लिया और इस विषय पर जरूर काम करेंगे। उन्होंने भी कहा कि उनके भी कानून हैं, पुलिस व्यवस्था भी है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर कि कुछ साल पहले की बात है कि शायद उतनी समझ न थी कि टेररिज्म क्या होता है और इंटरनेशनल क्राइम। लेकिन क्राइस्टचर्च में भी आप देखें, शायद 2019 की बात है कि क्राइस्टचर्च अटैक्स मॉस्क पर अटैक हुआ था। तो अब न्यूजीलैंड एक पहले दूर दराज के इलाके में था, लेकिन वो भी एक तरह से टेररिज्म का शिकार बन चुका है, रह चुका है। तो वो समझते हैं कि टेररिज्म क्या होता है, ये नहीं कि वो नहीं जानते। तो जब दोस्ती हमारी ऐसी है और हम उसको नए लेवल्स पर ले जा रहे हैं, फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं नेवीज के कोऑपरेशन में, तो मेरे विचार में तो उन्होंने, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्ष्मण जी ने भी नोट कर लिया होगा और इसमें सहयोग जरूर होगा।
आइए सुनते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला।
फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं।
तो आपने इंडो पैसिफिक का जिक्र किया, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्ष्मण जी ने भी कल रायसीना डायलॉग में काफी इसके बारे में विस्तृत चर्चा की और बोला कि भारत इंडो पैसिफिक का एक महत्वपूर्ण कंट्री है और हम भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहेंगे। तो ये सहयोग का जो बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं बोला, तो आपको क्या क्या लगता है कि कौन सी सेक्टर्स है जहां पे इंडिया न्यूजीलैंड एक साथ काम कर सकता है इंडो पैसिफिक के संदर्भ में?
इंडो पैसिफिक में बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे आप देखें कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में एक पैसिफिक आइलैंड फोरम भी है, एक पैसिफिक आइलैंड डेवलपमेंट फोरम भी है। वहाँ के जो देश हैं मौजूद है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिलके भी काम कर रहे हैं। भारत ने भी फिपिक करके एक तरह से अरेंजमेंट बनाया है, फोरम फॉर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, तो उनमें वो काबिलियत नहीं है अपनी सुरक्षा को खुद संभालने का। कोविड टाइम में भी उन दिक्कतें पेश आई थी क्योंकि वो टूरिज्म पर निर्भर हैं। तो जो कंट्रीज हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो पहले भारतीय मूल के लोग फिजी में काफ़ी बसे हुए हैं। जब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे देश हैं, तो इनको मदद पहुँचाने में, इनकी सहायता देने में कंट्रीज जैसे हम इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मिलकर कर सकते हैं। पहले कितनी मुश्किल थी कि डायरेक्टली कुछ पहुँचाना हो, वैक्सीन पहुँचाना हो छोटे किसी देश को, तो बहुत मुश्किल होता था। अब तो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। ओवरऑल आप देखें कि हमारे अप्रोच ऐसा है कि हम सभी कंट्रीज को वहां पर साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो राइट माइंडेड रूल्स बेस्ड अप्रोचेस हैं, तो जो जो कंट्रीज अगर उसको मानते हैं, तो हमें मिलकर सहयोग करना चाहिए। और न्यूजीलैंड इंडिया तो अवश्य, तो हम लोग वहाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में रहेंगे।
एम्बेसडर शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत गीतेश शर्मा और पत्रकार मानस प्रतिम भुयान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में